ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। महाकुंभ पर लोकसभा में श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान देश की विविधता में एकता का अनुभव किया गया।
पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत की क्षमता के बारे में संदेह को दूर कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को मान्यता दिए जाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र में उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का उल्लेख भी किया। अमरीका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग में निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज रायसीना डायलॉग में सुश्री तुलसी गबार्ड ने पिछले कुछ दिनों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और श्री मोदी के संयुक्त वक्तव्य से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाना बहुत ही रचनात्मक रहा। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5,00,000 नौकरियां दी हैं और 1,00,000 से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अच्छी वित्तीय स्थिति में है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश में 2020 से यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में काफी किफायती है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में रेल दुर्घटनाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिव तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर चर्चा हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय गैर सरकारी संगठनों सोरोस आर्थिक विकास कोष और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघनों की जांच के लिए बेंगलुरु में 8 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है। 2016 में गृह मंत्रालय ने सोरोस ओएसएफ को भारत में गैर सरकारी संगठनों को अनियमित दान देने से रोक दिया गया था। गजा पट्टी पर इसराइल के ताजा हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये हमला इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के जनवरी में विफल होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इसराइली सुरक्षा बलों ने बताया कि इस हमले में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स आज देर रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्षयान दोनों को लेकर कल सुबह करीब 3:30 बजे पृथ्वी पर उतरेगा। संभावना है कि ये यान फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरेगा। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम का सामना शाम 5:30 बजे से वेल्स से होगा। पुरुष टीम रात 10:30 बजे स्कॉटलैंड के साथ खेलेगी। कल पहले मैच में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।